अभी आदरणीय सरला दीदी हमारे बीच में है। हम आदरणीय दीदी का हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी आदरणीय दीदी से परिचित तो होंगे ही, क्योंकि आप ग्राम विकास प्रभाग की आप राष्ट्रीय संयोजिका, अन्नदाताओं के लिए जागरूक, योगिक खेती को विज्ञान की चुनौती पर खरा उतारा, देश तो क्या विदेश में भी इस चुनौती को आपने स्वीकार किया, कन्याओं के ट्रेनर हैं आप कुशल प्रबंधक, कुशल प्रशासिका हैं, महसाना सब जोन के इंचार्ज हैं, हजारों भाई बहने आपकी पालना में पल रहे हैं, आपकी विशेषता सरल चित हैं, हर्षित मुख हैं, अति स्नेही हैं, तो आपके सम्मान में मैं दो शब्द कहना चाहूंगी। नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। तो आप आदरणीय दीदी जी से अभी सुनेंगे अमृत बेला बरदानी समय का महत्व।
ओम शांति। तो आप सभी विश्व की करोड़ों आत्माओं में से प्रभु पसंद आत्माएं आज अपने शांतिवन परिसर में विशेष साधना कहो, तपस्या कहो, या एकांत में अपने आप को चेक कर चेंज करने के लिए विशेष दिवस पर पहुंचे हो। विशेष दिवस का अपना विशेष महत्व तो होता है। ये है हम सब की श्रद्धे आदरणीय दादी जी का पुण्य स्मृति दिवस भी है। इससे पहले अनेक बच्चियां यहां हो चुकी हैं, उन सभी बच्चियों का एक शक्तिशाली वायुमंडल यहां बना हुआ है। ऐसे सुंदर वातावरण में आप सभी बाबा के तपस्वी कुमार और अनुभवी कुमार पहुंचे हैं, तो मैं आप सभी का इस बच्ची के शुभारंभ से पूर्व खूब खूब हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। गीता बहन ने बहुत ही सुंदर रीति से लक्ष्य को स्पष्ट किया और उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए, उन गहन अनुभूतियों के लिए जो अभी का विषय है, वो आपको सहयोग करेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर चीज का आदि बड़ा शक्तिशाली होता है, सत्व प्रधान होता है। बच्चे को देखो, इस जीवन का जो बचपन है, उस बचपन की अवस्था में सत्वगुणी निखालस चेहरा, और वो बच्चा हर एक को खींचता है। ये जीवन का आदिकाल। इसी रीति से सृष्टि चक्र के आदिकाल को देखें, सतयुग, जिसको हम स्वर्णिम दुनिया कहते हैं, जहां सब कुछ सुंदर और सत्व प्रधान है, तो वो आदिकाल भी बड़ा सुंदर है। और उस सुंदर युग की शुरुआत इस कल्याणकारी संगम युग पर हुई। बाबा कहते हैं कि सारा ही संगम युग ये अमृत वेला है, क्योंकि सारे संगम के अंदर हम ब्राह्मणों की चढ़ती कला है, सारा ही संगम हम परमात्मा अनुभूति जिसके द्वारा जीवन में अलौकिक आनंद और खुशियों का अनुभव करते रहते हैं। परंतु फिर भी विशेष बाप दादा ने हम सब को ये लक्ष्य दिया है, अटेंशन खिंचवाया है कि इस संगम युग में भी जो दिन का आदिकाल, उस आदिकाल को हम सर्वश्रेष्ठ बनाएं, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्राह्मण वो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। इस वरदानी समय का जो महत्व बाबा ने हम सभी बच्चों को समझाया है, सबसे पहली बात, अब तक भगवान को पुकारते आए, क्षणिक दर्शन और शांति के लिए उससे मांगते आए, लेकिन अमृत वेले के लिए बाबा ने कहा है कि मैं बच्चों से मिलने के लिए बच्चों का वतन में आवाहन करता हूं। अमृत वेला विशेष हम बच्चों से मिलने का समय बाप दादा ने दिया है। आप सोचिए, सबसे महान हस्ती वो हमारा आवाहन कर रही है, हमें अपने वरदान और शक्तियों से भरपूर करने के लिए। इस समय पर बाबा कहते हैं कि सुबह सुबह का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का, तो जिस प्रकार से ब्रह्म में शांति है, इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में भी हम सो करके उठे हैं, आत्मा बिल्कुल फ्रेश है और बाह्य वातावरण वो भी बिल्कुल शांत है। जबकि दूसरे समय पर हमें आवाज और अनेक प्रवृत्तियों से अपने आप को मुक्त कर उस शांति की अवस्था का अनुभव करना पड़ता है, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में ये वातावरण भी हमें उन प्राप्तियों के लिए सहज ही फलदायक होता है। तो सुबह सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में हम बाप दादा से सहज अनुभूति और प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि ये आदिकाल है, अगर हमारा सुबह अमृत वेला आदिकाल श्रेष्ठ जाता है तो मध्य और अंत वो भी श्रेष्ठ होता है। मध्य अर्थात दिन के बीच में भी आत्मा वही स्फूर्ति और शक्तियों का अनुभव करते हुए आनंदमय स्थिति में रह सकती है। एक अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने बहुत अच्छा कहा था। बाबा ने कहा कि बच्चे, अगर सुबह अमृत वेले आप एक घंटा भी लेट उठते हो, तो यहाँ का एक घंटा लेट उठना सत्यों का एक जन्म पीछे आना। समझा हिसाब? कई बार हम सोचते हैं ना कि ठीक है, अमृत वेला तो कर लेते हैं, थोड़ा देरी के बाद बैठेंगे, लेकिन बाबा ने ये गणित हमें पढ़ाया कि एक घंटा लेट अर्थात एक जन्म लेट है। तो इसका बहुत ही महत्व है। बाबा हमेशा कहते हैं कि अमृत वेले के समय आपकी जो भी आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको बाबा पूर्ण करता है। और एक बार तो बाबा ने यहाँ तक कहा था कि अमृत वेला बाप को रिझाने का समय है। अमृत वेले में जो भी हुए पाप हैं, उन पापों को खत्म करने की ये सबसे सुंदर वेला है। इस वेला का महत्व जितना हमने समझा होगा उतना ही सहज हम सभी अमृत वेले के अंदर बाप दादा से प्राप्तियों का अनुभव कर सकते हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि आप सभी जो भी यहाँ बैठे हैं हाथ खड़ा करेंगे जो अमृत वेला डेली करते हैं। मेजोरिटी सभी करते हैं। अब प्रश्न सिर्फ इतना उठता है, जैसे बाबा ने कहा है वैसे हम करते हैं? जैसे का माना अपनी उस शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर के बाबा से मिलन और प्राप्तियों की अनुभूति जो ये करते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे? थोड़े हैं। अब हमें सिर्फ इसी बात को समझना है, क्योंकि बुद्धि से हमने समझा हुआ है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ये मालूम ना हो कि अमृत वेला हमारे जीवन के लिए, पुरुषार्थ के लिए, प्राप्तियों के लिए आवश्यक है, वो हम समझते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चों ने बुद्धि तक उस चीज को समझा है, जब हम प्रैक्टिकल स्वरूप में लाएं तब उसको समझा कहा जाएगा। एक उठकर के बैठना नेमी नाथ के जैसे हम बैठते हैं, लेकिन बाबा से सर्व शक्तियों की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे सुबह अमृत वेले बिस्तर छोड़ करके फ्रेश होकर के आकर के बैठेंगे, लेकिन थोड़ा समय के बाद में जो वातावरण शक्तिशाली बनना चाहिए उसकी जगह धीरे 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 डल होता जाता है। तो बाबा ने कहा कि हमारी विधि के अंदर कोई कमी है जो हम शक्तिशाली अनुभूति नहीं कर सकते हैं। विधि है, आंख खुलते ही सबसे पहला मेरा संकल्प ये हो कि मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा बाबा से मिलन मना रही हूं। अपने अमृत वेले को चेक करेंगे, हम उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग जरूर करते हैं, लेकिन पहला संकल्प मेरा ये हो कि मैं आत्मा हूं, इसमें मैं समझती हूं काफी परसेंटेज है। और जो बाबा की पहली श्रीमत है उस पहली श्रीमत में हम यथार्थ रीति से उसका पालन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण यथार्थ अनुभूति नहीं होती है। साथ में मैं किससे मिलन मना रहा? तो बाबा ने कहा इसमें दो बातें हो जाती हैं, मैं आत्मा तो आप देह के भान को भूले, बाबा से सर्व संबंध निभा रहा हूं तो आप देह के संबंधों को भूले, जो हमारे ज्ञान का सार है या हमारे इस पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य है कि अपने को आत्मा समझकर बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति और प्राप्ति करना। ये अमृत वेले में यदि यथार्थ रीति से हमने कर लिया तो सारा दिन, बाबा ने कहा, कोई भी प्रकार के माया के विघ्न आपको आ नहीं सकते। तो सिर्फ हम अपनी विधि को चेक करें, बैठते बहुत प्यार से हैं, बाबा गुड मॉर्निंग भी कहते हैं, बाबा के साथ रूरिहान भी करते हैं, लेकिन जो एक आत्मिक वृत्ति से पहला संकल्प मैं आत्मा, क्योंकि बाबा किसको देता है, बाबा अपने रूहानी बच्चों से मिलन मनाता है, मैं उस स्थिति में हूँ, तो बाबा की शक्तियों को हम महसूस कर सकते हैं। नहीं तो बाबा ने कहा, कई बार बाबा मिसाल भी देते हैं कि जैसे जयपुर के अंदर में हठ योगियों का म्यूजियम है, उस म्यूजियम के अंदर में अलग अलग पोज में इसी रीति से अमृत वेले बच्चे भी जब बैठे होते हैं तो बच्चों का पोज कैसा होता है, अलग अलग होता है। कोई एक टांग के ऊपर टांग लग चढ़ा करके बैठा है, अर्थात हट से बैठा हुआ है, कोई घड़ी घड़ी इधर से इधर हो रहा है, तो हम नेमी नाथ नहीं है, हम नियम प्रमाण बाबा से शक्ति लेकर अनेकों को शक्ति देने वाली शक्तिशाली आत्माएं हैं। मेजोरिटी हमारे भाई एक कंप्लेंट करते हैं कि सारा दिन जॉब पर रहते हैं, सुबह से उठने के बाद रात तक हमको रेस्ट का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए अमृत वेले में हम शक्तिशाली स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं, अथवा कभी थकावट का अनुभव होता है या सुस्ती का अनुभव होता है। होता है ऐसा? होता है। बाबा ने कहा है जितना, क्योंकि ये जो अमृत वेले का समय है, इस समय पर बाबा कहता है मैं बच्चों की थकावट को दूर करता हूं। ये थकावट दूर होने के समय हमने उस समय को मिस कर दिया तो सारा दिन थकावट रहेगी। बाबा क्या करता है, बच्चों को शक्तियों से, वरदानों से, अपनी सकाश से, बाबा की वो शक्तिशाली किरणें जो हमारे तन और मन को शक्तिशाली बनाती हैं, इस विशेष समय को हम मिस कर देते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो थकावट का जो मूल कारण है वो दिन का रेस्ट न मिलना वो नहीं है। थकावट का मूल कारण है कि सारा दिन हम बॉडी कॉन्शियस में कर्म करते हैं, मैं और मेरेपन के भान में रहते हैं, थकाने वाला मैं और मेरापन है। अगर दिन का आदिकाल अर्थात अमृत वेला हमने उसी मिलन, जैसे अभी गीता बहन सुना रही थी कि हम उसमें समाये हुए हैं, हम उसमें खोए हुए हैं, इस खोई हुई स्थिति में आपने कर लिया तो हो नहीं सकता है कि आपको सारा दिन के अंदर थकावट लगे। और जिस समय हम यहां अमृत वेला कर रहे हैं, हजार भुजा वाला बाबा हजार शक्तियों की किरणों से मुझे आत्मा को संपन्न और शक्तिशाली बना रहा है, और उस समय पर ये खिड़कियां अगर बंद हों तो सकाश अंदर कैसे जाएगी। एक बाबा से हम ये वरदान प्राप्त करें कि मुझे अमृत वेले के समय पर इन खिड़कियों को खुला रखना है, ये माध्यम है। 5000 वर्ष के बाद बाबा हम बच्चों से मिला है और इतना प्यार से हमें शक्ति दे रहा है, और हम अगर खिड़की बंद कर लें, एक भावनात्मक रीति से भी अगर विचार करें, आपने किसी को बहुत खुशी से निमंत्रण देकर के बुलाया हो और वो व्यक्ति आपके घर आए और आप अपने घर का दरवाजा बंद कर दें तो उस व्यक्ति का सम्मान है, सम्मान कहेंगे नहीं कहेंगे। ठीक इसी रीति से सुबह सुबह इतना प्यार से वतन के अंदर माता पिता दोनों ब्रह्मा माँ के रूप में श्री पिता के रूप में हम बच्चों का आवाहन कर रहे होते हैं। हम बाबा के पास पहुंचे भी, बाबा को गुड मॉर्निंग भी किया और उसके बाद खिड़कियों को बंद कर दिया। तो सूक्ष्म में हमने अपनी दिनचर्या का आरंभ, बहुत गहरी बात है, उसको आप सोचना, किससे किया? उस सर्वशक्तिवान बाबा का इनडायरेक्ट में सम्मान तो नहीं किया ना, सम्मान तो नहीं किया ना। जहां बाबा से हमें गहरा प्यार है, जिगरी प्यार है, प्यार की ये निशानी है, ये आंख बंद नहीं हो सकती। इस आंख का बंद होना ये सिद्ध करता है कि मुझे बाबा से प्यार की कमी है। तब तो आंखें बंद हुई। अथवा आत्मा के ऊपर पास जन्म का बहुत कड़ा बोझा है, जिस बोझ से ये आत्मा बोझिल है, ये दोनों कारण हो सकते हैं। अब उन दोनों कारणों में से आप उसको खुद से पूछो कि प्यार तो है, और बाबा भी बच्चों के लिए कहता है कि बच्चे प्यार में पास हैं, लेकिन शब्द क्या आया, मुझे बाबा से प्यार तो है, तो क्या सिद्ध करता है? एक है मुझे अपने बाबा से प्यार है, आंख खुलते ही हम उस प्रभु प्रेम में लीन हो जाते हैं, एक है मुझे बाबा से प्यार तो है। तो ये जो तो है ये सिद्ध करता है परसेंटेज, देह भान को, इस कमी को हम खत्म करें। और आंख खुलते ही हर रोज रात्रि को सोने से पहले हम अपने आप से ये प्रतिज्ञा संकल्प करके सोएं, बाबा से गुड नाइट करके सोएं कि सुबह आंख खुलते ही मेरे नैनों के सामने बाबा खड़ा हुआ हो। मुझे याद है बड़ी दादी को जब हम लोग मिलते थे तो दादी हमेशा ये अपना अनुभव सुनाती थी कि 2 बजता है और बाबा मेरी खटिया हिला देता है, 2 बजे के बाद मुझे बाबा सोने नहीं देता है, और दादी उठ करके इतना प्यार से उस लवलीन याद में खो जाती थी। तो आज अगर हमारे ये आदर्श मूर्त यज्ञ के इतने कारोबार संभालते हुए, अनेक जिम्मेवारियों के बीच रहते हुए अमृत वेले को यथार्थ रीति से कर सकते हैं, तो दादियों जितनी जिम्मेवारी तो आप पर नहीं है ना? है किसी पर दादियों जितनी जिम्मेवारी? नहीं है। एज में भी अगर हम देखें, हमारी दादी जानकी, आप सब उनसे परिचित हैं, तो दादी से भी हमें ये प्रेरणा लेने की कि एज इतनी होने के बावजूद, शारीरिक तकलीफ भी अगर है तो वो होने के बावजूद भी, दादी हमारी कभी भी अमृत वेले को मिस नहीं करती है। जैसे आपने दादी की इस विशेषता को सुनकर के खुशी व्यक्त की, सचमुच में खुशी होती है, ऐसे आज हम अपने आप से ये एक दृढ़ संकल्प ले, ये गांठ बांधे कि चाहे मैं लौकिक या अलौकिक सेवा में कितना भी व्यस्त क्यों ना हूं, लेकिन मुझे अमृत वेले को मिस नहीं करना है। कर सकते हैं? कर सकते हैं? सोचना, हाथ खड़ा किया है बाबा के सामने में किया है, बाबा आपको जरूर शक्ति देगा, लेकिन लेकिन आता है, लेकिन ये है कि जब ये वायुमंडल बदलता है और आपकी परिस्थिति बदलती है तब ये मन थोड़ा कमजोर होता है। और हम क्या सोचते हैं कि आज नहीं कल, मैं आपको अनुभव से इतना जरूर कह सकती हूं कि अगर आज आप ये दृढ़ संकल्प करते हो और कोई दिन थकावट लगे, आज नहीं कल ये संकल्प आए, तो आप कल नहीं आज और अब मुझे बैठना है, इस नियम को तोड़ना नहीं। अगर आप दृढ़ता पूर्ण संकल्प करेंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि माया भी आपका पेपर तो लेगी ना कि आप में कितनी दृढ़ता है, और कोई ना कोई कारण जरूर निमित्त बनेगा, लेकिन निमित्त कारण को निवारण में बदल दो, समाधान स्वरूप बन जाओ। प्राण जाए वचन ना जाए, और सचमुच आपको ये अनुभव होगा कि जैसे आप बाबा के सामने जाकर के बैठेंगे, बाबा आपकी उन सभी थकावट को दूर कर देगा और आप ये महसूस करेंगे कि मेरे अंदर में एक एनर्जी, एक ऊर्जा आ गई है। क्योंकि हम सब की जवाबदारी आखिर तो बाबा पर है ना, और बाबा भी हमें उस स्वरूप से पहचानता है, जानता है कि ये मेरे बच्चे प्रवृत्ति में रहते हुए लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रख करके चल रहे हैं, तो बाबा भी हमें एक्स्ट्रा मदद देता है। लेकिन मदद देने के समय को अगर हम महत्व तो देते हैं और उस समय पर उसी रीति से उसको यूज करते हैं तो जरूर बाबा बंधा हुआ है। दूसरा एक संकल्प आप ये जरूर करें, जैसे हम 4 से 4:45 बजे तक बैठते हैं, कम से कम 15 मिनट मेरा शक्तिशाली जरूर होना चाहिए। बैठना मुझे 1.5 घंटा ही शक्तिशाली स्थिति में है, लेकिन अगर कोई साधारण संकल्पों में कोई दिन समय वेस्ट गया तो 15 मिनट तो मुझे शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करना ही है, और वो अनुभव करने के बाद ही आप उठें। क्योंकि हर संस्कार को चेंज करने के लिए या किसी भी संकल्प को स्वरूप में लाने के लिए दृढ़ता बहुत जरूरी है, नहीं तो जिस समय संकल्प करते हैं उस समय कोई ये नहीं सोचता है कि मैं कोई 2 मास के बाद इसको छोड़ दूंगा, 1 मास 2 मास 3 मास तक उस पर दृढ़ता से चलते हैं, धीरे 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 संकल्प के अंदर में ढीलापन आ जाता है। इसके लिए भी हमारा संकल्प ढीला ना हो, अव्यक्त बाप दादा के एक बहुत सुंदर महावाक्य हैं, मैंने तो उसको हमेशा के लिए नोट किया हुआ है। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि जब बच्चे संकल्प करते हैं तब उसमें दृढ़ता होती है, लेकिन फिर संकल्प कमजोर हो जाता है और छूट जाता है। तो संकल्प की दृढ़ता को बनाए रखने के लिए संकल्प रूपी बीज को, संकल्प क्या है, बीज है, संकल्प रूपी बीज को हर रोज अमृत वेले बीज बाप से शक्तियों का जल देते रहना। जिससे बीज फल के लायक बन जाएगा। तो जब हर रोज अमृत वेले में बाबा की शक्तियों का जल उस बीज को, संकल्प रूपी बीज को मिलता रहेगा, तो बीज के अंदर जो संकल्प में ढीलाश आ जाती है, ढीलापन आता है, वो नहीं आएगा। हर रोज वो संकल्प आपका चार्ज होता रहेगा, और चार्ज होते होते हम उसके अनुभवी बन जाएंगे। और अनुभवी बनने के बाद में एक फेज वो आती है कि फिर आप अमृत वेले के समय कितना भी सोना चाहेंगे लेकिन आप सो नहीं सकेंगे। इसको कहते हैं संस्कार परिवर्तन, क्योंकि अमृत वेला ये हम ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है उठना। अज्ञान काल में भी वो ब्राह्मण लोग अमृत वेले में उठते हैं, सुबह उठ करके पूजा कर्म करना हमारा यादगार है। इस यादगार को अभी संगम पर हम प्रैक्टिकल में करते हुए और सदा के अनुभवी बनेंगे। हमारे बीच आदरणीय दादी जी और मुनि बहन,
ओम शांति। हमारे बीच परम पूजनीय परम श्रद्धेय आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी पहुंच गए हैं और हमारे बीच कर्मवीर कर्मठ हमारी प्रबंधन की धनी आदरणीय मुन्नी बहन भी पहुंच गई हैं। हमारे सभा के अंदर आज पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए अधर कुमार और कुमार, जो आज अपने जीवन को पुनः एक नई दिशा देने आए हैं, उनके स्वागत में सबसे पहले मधुर वाणी ग्रुप आकर के अपनी भावनाएं प्रस्तुत करेगा। मधुर वाणी ग्रुप
प्रभु से लागी ऐसी सेवा भावना जागी। शिव शक्ति पांडव सेना से माया भी घबराए, दादी के दिन पे आए, दादी की यादें लाए। के जो हम जिंद हैं आधे पूरे बन सकते, पीढ़ी से दूसरे वो भी भूखे चढ़ सकते।
साकार के जो हम जिंद हैं आधे पूरे बन सकते, पीढ़ी से जो उतरे तो भी वो ऊँचे चढ़ सकते।
रह प्रवृत्ति में परे वृद्धि से पवित्र रह दिन लाना, प्रत्यक्षता का झंडा तुमको महावीरों लहराना। बनो निमित निर्माण निर्मल दादी यही सुनाए, दादी के दिल आए, दादी की यादें लाए।
को प्यार है कितना कितनी है आशाएं, यादगार हो ऐसी भट्टी कर कमाल दिखलाए।
दादियों का प्यार है कितना कितनी है आशाएं, यादगार हो ऐसी भट्टी कर कमाल दिखलाए।
विघ्न विनाशक बनना है यूं मौन तपस्या करना, शरियों को आगे रख मैं मेरा स्वाहा करना।
पांडवों की महिमा खुद पांडव पति भी गाए, दादी के दिन पे आए, दादी के यादें लाए। दादी के दिन पे आए, दादी की यादें लाए। अमर कुमार विजय कुमार, अधर कुमार आधार कुमार, अमर कुमार विजय कुमार, अधर कुमार आधार
परम आदरणीय दीदी मुनि दीदी का स्वागत गुलदस्तों के द्वारा करुणावन कर रही हैं और दादी जी को भी गुलदस्ते भेंट करें, तिलक दे रही हैं बहन। हमारे मंच की परंपरा है और हमारे बीच आज दृढ़ संकल्प के धनी ज्ञान रत्नों से खेलने वाले बाबा का परचम लहराने वाले अधर कुमार पहुंचे हैं। वो कुमार जो महावीर कहलाते हैं और आज बाबा के यज्ञ में एक दीवाल बनकर एक स्तंभ बनकर खड़े हैं। बाबा को भी नाज है, यज्ञ को भी नाज है। और हमारी मीठी दादी कहा करती थी बड़े गर्व से, हमारे पास इतने लाख युवा हैं, युवा जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसे युवाओं की भट्टी में, अधर कुमारों की भट्टी में मैं निवेदन करूंगी आदरणीय मुन्नी बहन से, जो खुद भी युवा हैं, मैं ये नहीं कहूंगी बुजुर्ग हैं, वो खुद भी युवा हैं और बाल्यकाल से ही सारा प्रबंधन संभालते आ रहे हैं, आज अपनी शुभकामनाएं आप सबके लिए रखेंगे। कैसे उन्हें प्रेरणा आई कि दादी जी के दिन पर वो आप सबको यहाँ आमंत्रित करके रिफ्रेश करें। आदरणीय मुन्नी दीदी, ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के त्याग मूरत, तपस्वी मूरत, अथक सेवाधारी, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसे कुमार अधर कुमार, अधर कुमार के आगे भी कुमार ही नजर आता है, तो ऐसे आप सभी पूरे भारत से यहाँ पधारे हैं। हो सकता है नेपाल के भी हो, तो आप सभी का प्यारे बाबा के घर में बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। हमारी सभी दादियों की तरफ से भी आपका स्वागत है। जानकी दादी जी लंदन में है, आप सबको बहुत याद भेजी है, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम के कारण नहीं आ पाई है। वैसे उनको 23 तारीख को आना था। गुलजार दादी जी आज अहमदाबाद में आ गए हैं, कल आपके बीच में यहाँ पहुँच जाएंगे। 25 तारीख को प्यारे दादी जी का भोग लगाएंगे और मोहिनी दीदी जी भी अपने स्वास्थ्य के कारण यहाँ सभा में उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन आप सबको बहुत 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 याद प्यार भेजी है। आप सभी प्यारे बाबा के घर आए हैं दादी के दिन पर, दादी जी की नवी पुण्यतिथि के दिन पर आप सभी बाबा के घर आए हैं। जब मैं प्रोग्राम बनाने बैठी तो मैंने सोचा इस बार किसको बुलाएं? एक साल माताओं को बुलाया था, एक साल युगलों को बुलाया था, इस साल फिर मैंने सोचा इस साल कुमार और अधर कुमारों को बुलाते हैं। तो आप सबकी बट्टी प्यारे दादी जी के स्मृति दिवस पर रखी गई है और आप इतने अच्छे दिन पर यहाँ आए हो, विशेष दिन पर आए हो, तो आप परम 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 पद्मा पदम भाग्यवान हो जो ऐसे सुंदर दिवस पर बाबा के घर आए हैं। तो अब मेरी आप सबके प्रति यही शुभ भावना, शुभ कामना है, आप सभी वरदान भूमि, तपो भूमि, परिवर्तन भूमि में पहुंच गए हो। आपको जो ये 4 दिन का समय मिला है, ये आपके लिए बहुत 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 वैल्यूएबल है, अनमोल है। इस समय को आप इधर उधर तेरी मेरी बातों में वेस्ट नहीं करना, लेकिन आप सभी अंतर्मुखता में रहना, मौन में रहना, तपस्या करना और अपनी चेकिंग करना। तो मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो विघन रूप है, उस कमी को दादी दिवस पर आप सभी स्वाहा करके, सदा काल का परिवर्तन करके, दृढ़ संकल्प लेकर के वापस जाएंगे और आप अपने को बहुत शक्तिशाली अनुभव करेंगे। आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम बने हैं, उन कार्यक्रम में आप पूरा पूरा लाभ लेंगे। समय पे आना, क्लास में आना, योग में आना, अमृत वेला आना, नुमा शाम के योग में आना, कुछ भी मिस नहीं करना और अपने को हर तरह से भरपूर करना, शक्तिशाली बनाना। बाबा जो कहते हैं हमें संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है, तो उसकी प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा स्थान क्या है? ये मधुबनी है, जहाँ पर आप मौन में रह के, अंतर्मुक्ता में रह के फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकते हो और अपने को आगे बढ़ा सकते हो। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, तो आप सब बाबा के घर आए हो, कुछ छोड़ के जाओ, बहुत कुछ लेके जाओ। छोड़ के जाना है अपनी कमियां और लेके जाना है सब प्रकार के दिव्य गुणों की माला गले में पहन करके, भरपूर होकर के, और बाबा के घर से जाना है जो पूरी बैटरी चार्ज हो जाए और फिर पूरा वर्ष भर बैटरी चार्ज रहे, सदा काल रहे पर वर्ष भर तो जरूर रहे। तब तक आपकी दूसरी भट्टी का नंबर आ ही जाएगा। इस समय में कुमार और अधर कुमार मिलाकर के लगभग 10,000 आए हैं। तो आप सबके कार्यक्रम जो भी है वो इसी डायमंड हॉल में चलेंगे। कुमार और अधर कुमार अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट हॉल हमारे पास नहीं है, जो है वो छोटा है आपके हिसाब से। इसलिए यहाँ पर हम बाबा का सब क्लासेज आज सुनेंगे, सबसे मिलन मनाएंगे, एक ही जगह हमारे सभी कार्यक्रम चलेंगे। आगे की दिनचर्या आपको मनोरमा बहन जी बताएंगे। मेरी तरफ से ओम शांति।
आदरणीय मुनि दीदी ने ये शुभ भावना के रतन जो लुटाए कि क्यों कर मन में प्रेरणा आई, एक बार हम अपने आप को भर के जाएं और निरंतर वो वर्षा हमारे अंदर पुरुषार्थ की, लगन की और आगे बढ़ने की होती ही रहे। हमारे बीच परम आदरणीय दादी रतन मोहनी जी हैं, जो यूथ विंग की चेयरपर्सन तो हैं ही, टीचर्स बहनों की भी ट्रेनर हैं, सारा विभाग वही संभालते हैं, डायरेक्टर हैं उसके। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि बाबा के इन रत्नों को देखकर दादी अपने वरदानी बोल द्वारा हम सबको तृप्त करें। क्या प्रेरणा दादी जी को आ रही है, दादी जी अपने मुखारविंद से ही हम सबके सामने रखेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के घर में बाबा के बच्चे पहुंच करके बाप से सदा वही खजाना लेते रहते, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबको याद है क्या बाबा का? हमें यही मंत्र है, बच्चे सदा एक बाप को याद करते रहो और एक बाप को याद करने से अपने को वह शक्ति मिलती है जिस शक्ति से आत्मा तो शुद्ध बल है लेकिन फिर भी जो अनेक जन्मों का खाता है वह भी हमारा सहज खत्म होता जाता है और हम इस दुनिया में रहते, हर कार्य करते, सदा बाप की याद में रहते रहें, यही बाबा ने हमें महामंत्र दिया है। और इस महामंत्र को सदा याद रखते, अगर हम अपने ऊपर यह अटेंशन रखते हैं, बरोबर बाबा ने जो हमें मंत्र दिया है, सचमुच मंत्र के समान, भले हम कहते हैं मंत्र का उच्चारण करना या बार बार मंत्र को याद करना, ये तो भक्ति मार्ग का काम है, लेकिन भक्ति मार्ग ये यादगार है जो हमारे जीवन का, जीवन के अंदर बाबा ने हमें सिखाया है। क्योंकि यह महामंत्र, मैं कौन हूँ और किसका बच्चा हूँ, शब्द दो ही है, कौन हूँ, अगर ये बात हमें पक्की है, याद है ना मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं, बोलो, मैं हूँ आत्मा। यह बात हमें अंदर ऐसी पक्की करनी है, क्योंकि हमें अनुभव है, जब हम बाबा के पास आए तो बाबा के साथ चलते फिरते घूमते भी हमारी ऐसी बाबा ने नेचुरल जीवन बना दी जो सदा याद रहे, मैं किसकी किसका बच्चा हूँ। भले कहने में बच्ची आती है, परंतु बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते थे, सदा याद रखो मैं किसका बच्चा हूँ, सर्वशक्तिवान परम आत्मा का। परमात्मा का बच्चा कौन? आत्मा। तो आत्मा जब हमें याद रहता है, परमात्मा की मैं संतान, वैसे तो आम रीति से सब मानते हैं, लेकिन मानने का यथार्थ अर्थ, जिस बात को माना जाता है, जब बाप परमात्मा और ऐसे बाप की मैं संतान, तो कहा जाता है आम रीति से, जैसा बाप वैसा ही बच्चा। हमें भी हर एक को अपने आप से ये पूछना है, जैसा बाप वैसा बच्चा। बाप को तो हम सब मानते हैं, अपने को बाप का बच्चा तो मानते ही हैं, लेकिन ये जो कहावत है अथवा ये जो यथार्थ बात है, जैसा बाप वैसा बच्चा, देखो बाबा ने, शिव बाबा ने जैसा शिव बाबा का रूप, आत्माओं का भी ऐसा ही रूप बनाया है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को बाबा ने हमें ऐसे प्रैक्टिकल करके बताया, जो जब भी हम अभ्यास करते थे, सचमुच शरीर में होते और सदा हम इस शरीर से नहीं, आत्मा, केवल आत्मा नहीं परंतु शुद्ध आत्मा हूँ। अगर हम ये याद रखते हैं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध शब्द कहने से ही, शुद्धि क्या चीज है, शुद्ध वस्तु कैसी होती है, और शुद्ध वस्तु कितनी प्यारी लगती है, ऐसे ही बाबा अभी फिर से हम बच्चों को ऐसी शुद्ध आत्मा, क्योंकि यह सारी नॉलेज बाबा ने दी है, अनेक जन्मों के कर्मों का खाता आत्मा के अंदर भरा हुआ रहता है, परंतु ये संगम का समय वह है जब बाप स्वयं हम बच्चों को यह शिक्षा देकर ऐसा ही बनाता है, जैसा बाप वैसे बच्चे, जैसे बाप सदा सर्व का प्यारा वैसे ही बच्चे सदा सर्व के प्यारे। सर्व के प्यारे तब बन सकते हैं जब जैसा बाप वैसे बच्चे। हम सब जानते हैं बाप परमात्मा, और यह भी अभी हमें शिक्षा मिली है, मैं उनकी संतान आत्मा। अब शिक्षा मिली, समझ आ गई, समझाने योग्य बन गए। अब हमें हर समय हर पल अपन को चेक भी करते रहना है, फिर अपने को याद भी कराते रहना है, और अपने अंदर वह यथारत क्वालिटीज हरे को अनुभव होगा। जब शुरू में आते हैं सुनने से कितना नशा चढ़ता है, और उस नशे में शुरू में कितनी अच्छी अवस्था बन जाती है। इसलिए सदा हम इन बातों को याद रखते, अपने को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, अर्थात यह लक्ष्य मुझ आत्मा के अंदर सदा परम आत्मा पिता की याद बनी रहे, तब ही मैं आत्मा बाप समान उन गुणों का स्वरूप स्वयं को बना सकेंगी। क्योंकि हम आत्माओं में शक्ति जागृत तभी होती है जब हम अपने ओरिजिनल लक्ष्य को, ओरिजिनल स्वरूप को याद करते हैं, और उन्हीं यादों से अपने में फिर उन गुणों को चेक करते और स्वयं को ऐसा बनाते जाते हैं। अभी तो आप सभी इन बातों से बड़े समझदार भी बन चुके हैं, अनुभवी भी बन चुके हैं, फिर भी बाबा हमारा समय समय पर अटेंशन खिंचवाते हैं, क्योंकि चलते चलते आज की दुनिया का वातावरण हर एक जानता है कैसे किस समय किस प्रकार हमें हम उसमें चलते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे सदा बड़ी सावधानी से, और मुख्य सावधानी सदा हमें यह स्मृति रहे, लौकिक स्मृति कभी भूलती नहीं, ऐसे ही हम अपने को ऐसा ही अलौकिक जीवन, यह हमारा अलौकिक जन्म है, जबकि परलौकिक बाप ने हमें अपना बनाकर और फिर से दुनिया को परिवर्तन करने के लिए निमित्त बनाया है। यह बात अगर हम अपने को याद दिलाते रहते हैं, अपने में भी परिवर्तन आता रहेगा, और परिवर्तन से स्वयं को खुशी के साथ जीवन के अंदर वो धारणाएं, और उन धारणाओं के साथ जब हम किससे भी मिलते हैं तो सब हमको प्यार भी करते हैं, हम भी सबको प्यार करते हैं, अर्थात हमारी वृत्ति दृष्टि सदा एक बाप और हम सब से एक बाप के बच्चे है, यह स्मृति सदा बनी रहे। उन स्मृतियों से हम एक दो को देखते अपने को उन गुणों से भरपूर करते आगे बढ़ते रहें। जानते तो आप सभी है, सब अलग अलग रीति से अपना अपना पुरुषार्थ तो करते ही रहते हैं, फिर भी बाबा ने हमारा ये संगठन इसलिए बनाया है, हम बार बार एक दो को याद दिलाते, न सिर्फ याद परंतु हमारी वृत्ति दृष्टि एक दो में ऐसी बनी रहे जो हम सदा एक दो को देखकर खुश होते रहें। बाबा कहते हैं बच्चे सदा खुशियां देते रहो तो सदा खुशी में रहेंगे, खुशी हर एक चाहता है। इसलिए बाबा के महावाक्य सदा याद रखते हम स्वयं भी खुशियों में रहें, लेकिन ये बात याद रहे जब हम औरों को भी खुशियां देते रहेंगे, खुशी खुशी से सबसे मिलते रहें, न कभी किसकी कमी देखें न किसके कमी का वर्णन करें, सदा सबके अंदर गुण तो होते ही है, जितना हम गुणों को देखेंगे उतना हम स्वयं गुणवान बनते जाएंगे, स्वयं भी खुश औरों को भी खुशी दे सकेंगे। यही बाबा हम बच्चों से चाहते हैं और हम बच्चे बाबा के इस फरमान को सदा पालन करते ऐसे ही करते रहें तो हम भी सदा खुशियों में रहते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सदा हम बाप को याद करते सदा खुशियों में रहते रहेंगे। शांति शांति शांति।
ओम शांति। अभी आप सबने दादी जी के आशीर्वचन सुने, अभी आप सभी का परिचय दादी जी से कराया जाएगा, उसके बाद किसी को भी भोजन पर नहीं जाना है। आज ही आप सभी को बाबा के घर की सौगात दी जाएगी और आपको भी यज्ञ प्रति जो देना है आप जहां सौगात लो वहां रख सकते हो। आपको 10 लाइन में सौगात मिलेगी, 6 लाइन पीछे में है, 4 लाइन स्टेज पर है, तो आपको आज ही सौगात देंगे क्योंकि आगे सभी बहुत बिजी है दादी दिवस पर, तो दोबारा लाइन नहीं बनाएंगे। और आज सौगात कुमारों को भी लेनी है, अधर कुमारों को भी लेनी है, साथ में जो भी माता कन्या कोई भी आई है साथियों को भी लेनी है, टीचर्स बहनों को भी लेनी है, और कोई भी सेवाधारी जिन्होंने कल सौगात नहीं ली थी उनको भी आज ही सौगात लेनी है। अभी आपका परिचय पहले बता देते हैं, तो आपका परिचय जो है जो ईस्टर्न जोन से आए हैं वो हाथ ऊपर करेंगे, यूपी वाले हाथ ऊपर करेंगे, दिल्ली और दिल्ली के कमरे आगरा हाथ ऊपर करेंगे। ये तो सौगात की लाइन में लग गए हैं, लाइन नहीं शुरू करना भाई, सौगात की। इंदौर और भोपाल हाथ ऊपर करेंगे, मध्य प्रदेश, कर्नाटक हाथ ऊपर करेंगे, तमिलनाडु हाथ ऊपर करिए, महाराष्ट्र, बंबई, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, राजस्थान, अभी आपको सौगात बताते हैं। ये लोग को तो कोई ने बोला नहीं, उठो, फिर भी उठ गए। लाओ ये थैला है जो आप सबके लिए सौगात है, साथ में ये दादी जी का फोटो फ्रेम है, दादी दिवस पर आए हैं तो, और ये दादी जी की बुक बनी है 25 अगस्त में, वो आपके लिए है, और ये टोली है आपके लिए। कोई हड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, खाना कोई कम होने वाला नहीं है। आज के बाद सौगात की लाइन नहीं लगेगी, आप लोग को कहीं जाना नहीं है, सौगात लीजिए। टीचर्स बहनों सहित सब सौगात यहाँ पर ही लेंगे। पहले कोई टीचर्स है क्या? कितनी बहनें बैठी हैं यहाँ? टीचर्स को लास्ट में दे देना। कहाँ है टीचर?